This is an ABP Life podcast.
सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सोने के भाव रिकॉर्ड तेजी के साथ अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। चांदी की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। अगर बात करें सोने के भाव की, तो सोने का भाव 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार तो कब का पहुंच चुका है, और विदेशी बाजार में भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये दाम कम होंगे, क्या सोने की खरीदारी कम हो जाएगी, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम इतने ज्यादा, क्या इसका इंडियन इकोनॉमी पे कोई असर होता है। आइए जाने ऐसे तमाम सवालों के जवाब एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आज के FII में। मैं मानसी हूँ आपके साथ, नमस्कार। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं
दोस्तों, एबीपी पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आकाश शिंदल है, एक इकोनॉमिस्ट हूँ, इकोनॉमी के अलग अलग एंगल्स पे अपने व्यूज देता हूँ। आज सोने और चांदी को लेके और इकोनॉमी को लेके व्यूज देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ।
थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी आपसे वो यही, आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करते हैं गोल्ड प्राइसेस या सिल्वर प्राइसेस?
देखिए, कई फैक्टर्स हैं जिन पे गोल्ड और सिल्वर मूव करता है, लेकिन आपका प्रश्न शायद ये है कि आज की तारीख में ये जो इंक्रीज आया है पीछे कौन से कारण है, क्योंकि किसी समय पे कौन से कारण जो है वो प्ले आउट करते हैं और किसी समय कुछ कारण प्ले आउट करते हैं। इस समय जो ये इंक्रीज है उसके पीछे जो कारण है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय है, कुछ इंटरनेशनल है, कुछ डोमेस्टिक है। सबसे पहले यूएस का जो फेड है उससे रेट कट की उम्मीद है, यानी इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है, वो एक कारण है। दूसरा, ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है या कहें कुछ हद तक घबराहट होती है, तो गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट मान के उसकी बाइंग होती है। अभी क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इसराइल वहां से इशू चल रहा है, उसने भी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो, साथ ही साथ हूती अटैक्स भी पीछे रहे हैं। अनसर्टेनिटी की वजह से जब भी अनसर्टेनिटी घबराहट ज्यादा होती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, वो गोल्ड है। उसके अलावा चाइना गोल्ड की काफी बाइंग कर रहा है और चाइना दुनिया की सेकंड बिगेस्ट और बड़ी पावरफुल इकोनॉमी है। हिंदुस्तान और उसके अलावा दुनिया के कई मुल्कों में, इंपॉर्टेंट मुल्कों में इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन में कुछ हद तक अनसर्टेनिटी होती है, जब रिजल्ट नहीं आता तो लोग गोल्ड और सिल्वर की, तो मैं ग्लोबल एंगल की बात कर रहा हूँ, उसकी बाइंग कर रहे हैं। तो यूएस डॉलर की सिचुएशन भी देखी जाए, हिंदुस्तानी रूपी को देखा जाए, तो कई फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा गोल्ड की अगर स्पेसिफिक बात करें तो गोल्ड की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है और गोल्ड की जो एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी है वो उतनी अब नहीं दिख रही, यानी आम भाषा में कहूं, देसी भाषा में, उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी अब कम हो रही है, यानी गोल्ड उतना निकलने की संभावना नहीं दिख रही, जबकि दुनिया भर में डिमांड है। हिंदुस्तान में तो हम लोगों को शौक है ज्वेलरी के रूप में लेने का, कुछ ओकेजन पे जब हम सोना लेते हैं उसे शुभ भी मानते हैं, बट दुनिया इसे कई और एंगल से भी लेती है, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट चाइना की तरफ से लगातार बाइंग आ रही है गोल्ड की, तो इस वजह से डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई उस हिसाब से होने की संभावना नहीं लगती।
जी अच्छा, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखें, तो 2012 से 2018 तक गोल्ड के दाम नहीं बढ़े, लेकिन फिर एकदम से अभी तक बढ़ ही रहे हैं, ऐसा क्यों?
देखिए, ये तो अगर हम गोल्ड की हिस्ट्री देखते हैं, इस तरह के कई हमें एरर्स दिख जाएंगे। कई बार गोल्ड एकदम अप्रिशिएट किया है, उसके बाद जो है वो एक पर्टिकुलर बैंड में आके रुक जाता है, तो ये चीज तो होती रही है और आगे भी ये ऐसी ऐसी क्लास है जिसमें होती रहेगी। किसी को अगर कंसिस्टेंसी चाहिए रिटर्न में तो फिक्स डिपॉजिट में जाता है, तो गोल्ड तो ऐसा एसेट है जनरली इसे सेफ हेवन एसेट माना जाता है, अनसर्टेनिटी में बाइंग ज्यादा होती है, इसीलिए तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए जाइए आप गोल्ड में। और एक चीज और बता दूं, लोगों को सुन के खुशी होगी, सबसे समझदार गोल्ड का इन्वेस्टर कौन है? सबसे समझदार गोल्ड का इन्वेस्टर है हमारी हिंदुस्तान की महिलाएं। वो गोल्ड को लेती क्या है, ज्वेलरी शेप में, और वो ज्वेलरी क्या है उससे उनका इमोशनल कनेक्ट होता है, वो 25 साल 30 साल कई बार तो दूसरी तीसरी जनरेशन तक पास होती है, तो वो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट उसमें अपने आप आ जाता है। तो सबसे पहले गोल्ड का अगर सबसे बढ़िया इन्वेस्टर किसी को मानना है तो मिलना चाहिए हमारी हिंदुस्तानी महिलाओं के, हमारी माताओं को, दादियों को, जिन्होंने 50 साल 25 साल तक प्रिजर्व किया है और आगे प्रिजर्व करने की संभावना है। तो यही चीज बताती है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं।
नहीं, वो बात तो मैंने आपकी समझी, लेकिन 2018 के बाद से अगर हम देखें जो ये लगातार बढ़ रहे हैं,
ऐसे क्या हालात हुए, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध हो चाहे कुछ हो, वो सब तो अब हो रहा है।
देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट अब दिख रहा है। कारण क्या है, इम्पैक्ट अब दिख रहा है। वॉर ठीक है, पहले शुरू हो गई थी, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड वॉर की वजह से इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है। अब देखें, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हालात क्या हो गए। अमेरिका जैसी इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ गई, यूरोप की कितनी इकोनॉमीज में गैस सप्लाई कम हो गई, उनकी जीडीपी ग्रोथ कम हो गई।
वो अभी दिख रहा है, लेकिन 2018 के बाद से क्यों बढ़े?
2018 के बाद से बढ़े हैं, बट जो सडन राइज है वो अब दिख रहा है। और दूसरा, फिर जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है, अगर कोई कंट्री बाई करना शुरू कर देती है तो डिमांड एंड सप्लाई है, तो अगर कोई कंट्री बाय करती है तो उसकी वजह से रेट अप्रिशिएट करता है।
जी,
तो वो फैक्टर अच्छा, अपनी जगह है।
जी, गोल्ड प्राइस, अगर जैसे बहुत सारे लोगों को तो ये समझ भी नहीं आता कि कौन सी चीज बढ़ रही है, अच्छी है या बुरी है, तो अगर एक आम इंसान समझना चाहे गोल्ड प्राइस के दाम बढ़ना, क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है?
देखिए, हिंदुस्तानियों के हिसाब से तो अच्छी चीज है, क्योंकि हिंदुस्तानी हर घर में कुछ ना कुछ आपको जो है जेवरात मिल जाएंगे।
ओके।
जो माँ के दादी के बनाए हुए होंगे, क्योंकि जेवरों से हम हिंदुस्तानियों को प्यार है। वैसे भी शगुन के रूप में हम सोना देते लेते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी घर में कुछ ना कुछ सोना है। तो जाहिर सी बात है बैठे बैठे उनके जो एसेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है। हाँ, ये मानता हूँ जिनकी आगे शादियां आने वाली हैं वो ये जरूर देख रहे होंगे कि हमारा खर्चा जो है बढ़ रहा है, शादी में ज्वेलरी लेनी है वो उनके लिए महंगी हो रही है। अब उसमें से शायद कुछ लोग एक्सचेंज करें, किसी ने अगर गोल्ड पहले ले रखा है तो वो जो है किसी और शेप में ले रखा है, बिस्किट शेप में या किसी और शेप में, वो शायद एक्सचेंज करें। तो उनके लिए ये है कि जिसकी शादी अभी होने वाली है और उन्होंने प्लान किया हुआ था कि गोल्ड बहुत बाय करना है शादी के समय, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादियों में बहुत गोल्ड पहना जाता है, उनके लिए कुछ तकलीफ का मैटर हो सकता है। बट ओवरऑल, अब शादियां तो सबकी होनी नहीं, ओवरऑल एज अ कंट्री देखें तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज है, क्योंकि सबके एसेट्स जो है, सबके पास गोल्ड की ओनरशिप है, वो बढ़ गई है।
कहीं ना कहीं जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये बात सच है, जिनके पास सोना पहले से है उनके एसेट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रही है खरीदारी कम होगी।
देखिए, इसमें दो एंगल होंगे। अभी जिन लोगों को सोना के गहने का शौक है वो तो लेंगे। अब इससे हो सकता है कि शायद कुछ लोग फ्रेश गोल्ड उतना ना परचेज करें जितनी की एक्सचेंज होना शुरू हो जाए, यानी पुराने गहने तोड़वा के नए बनाए जाएं, या गोल्ड जिनके पास कॉइन या बिस्किट की शेप में या बार की शेप में, वो शायद जो है कन्वर्ट करा लें। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत लोग बहुत समझदारी की प्लानिंग भी करते हैं, जब उनके बच्चे 15-16 साल के होते हैं तभी से जो है गोल्ड जो है वो बार या कॉइन की शेप में परचेज करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि बच्चों की शादी होनी है 25-30 साल की एज में, उस समय गहने में कन्वर्ट करा लेंगे। ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में, तो मेरे हिसाब से लोगों का सोना पहनने का शौक तो कम नहीं होगा, ना ही होना चाहिए। बट हाँ, ये है कि शायद नया गोल्ड ना लेके शायद एक्सचेंज या कन्वर्शन वो पुराने गोल्ड की वो हो जाए,
तो इससे असर पड़ेगा फिर गोल्ड मार्केट पर।
देखिए, गोल्ड मार्केट में जो मैंने बताया आपको, डिमांड एक फैक्टर है जो हिंदुस्तान में है ज्वेलरी की, जो बट ये इंटरनेशनल मार्केट है। अब चाइना से डिमांड कम होती मुझे नहीं लग रही है। दूसरा, ग्लोबल सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है वो चेंज होता नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हिंदुस्तान तो एक फैक्टर है जो गोल्ड प्राइस है, ये ग्लोबल है, तो हमें सारे दुनिया भर के फैक्टर्स देखने हैं। इसलिए ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती कि गोल्ड प्राइसेस डाउन जाएंगे। हाँ, यहाँ से जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ सकती है, ग्रोथ शायद उस रफ्तार से ना हो जो हमने पहले देखी है, बट गोल्ड प्राइसेस डाउन जाने की संभावना ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी है तो ग्लोबल एंगल से एनालाइज करना होगा, मुझे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि इसमें क्रैश आए या डाउन जाए।
यानी कि जो इंसान अगर फ्रेश गोल्ड खरीदना चाहता है तो उसके लिए अभी दाम सामान्य होने की कोई उम्मीद नहीं है।
अभी जो है मुझे इस तरह की संभावना नहीं लगती, लेकिन उनको एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो अभी भी जो है कोई गलत नहीं होगी उनकी परचेजिंग। जैसे मैंने कहा,
आने वाले समय में और बढ़ सकता है।
बिल्कुल, आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। और जब ज्वेलरी के शेप में हम लेते हैं तो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हो जाती है, क्योंकि ज्वेलरी हिंदुस्तानी लोग 20 साल 25 साल रिटेन करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो ज्वेलरी में ये एक फायदा है, जहां ज्वेलरी में लेते हैं तो कुछ खर्चा भी आता है बनाने का, कुछ उसमें जो है चार्जेस लिए जाते हैं, तो वो सब चीजें भी होती हैं, कुछ नुकसान होता है बनवाते टाइम, मतलब एक्सपेंडिचर आता है, नुकसान तो नहीं कहूंगा मैं 15-20% का, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हो जाती है। तो इसीलिए अभी भी कोई ज्वेलरी शेप पे लेना चाहता है तो मेरे हिसाब से अगर उनके पास लिक्विडिटी है, पैसा है, तो दे शुड गो अहेड।
एग्जैक्टली। आखिरी सवाल जो आपसे लेना चाहूंगी वो यही, गोल्ड प्राइस बढ़ने का असर क्या होता है इंडियन इकोनॉमी पर?
देखिए, इकोनॉमी पे जो है कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता। आप इकोनॉमी की बात करें मैक्रो लेवल पे तो बहुत ज्यादा असर नहीं होता।
ओके।
क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी है, सारी दुनिया को जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स के ऊपर असर पड़ता है।
ओके।
इंडिविजुअल के एसेट्स जो है बढ़ जाते हैं। जैसे हम एक कंपैरिजन करते हैं दूसरे जो एसेट क्लासेस हैं, जैसे शेयर्स हैं या जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है। अब बहुत से हिंदुस्तान के गांव में या इंटीरियर्स में घर ऐसे मिल जाएंगे जो स्टॉक मार्केट से अभी तक कनेक्टेड नहीं है, उन्होंने शेयर मार्केट में भी पैसा नहीं लगाया, लेकिन गोल्ड हिंदुस्तान के गांव के हर घर में भी मिल जाएगा आपको। अब उसी तरीके से जमीन जायदाद बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्होंने सारी उम्र की कमाई से एक ही घर बनाया है, तो उनके पास एक्स्ट्रा एसेट्स नहीं है। गोल्ड लेकिन सबके पास निकल आएगा, किसी पास कम किसी के पास ज्यादा। तो उससे ये आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी को तो कोई मैक्रो लेवल पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंडिविजुअल हाउस होल्ड बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी एक घर होगा, शायद शेयर्स ना हो, लेकिन उनकी माता जी या दादी जी जो है वो बताएं कि 40 तोले का जो है सोने का हार पड़ा हुआ है मेरे पास। तो जो पुरानी इन्वेस्टमेंट हम करते आ रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड से जो हमारा मोह है हिंदुस्तानियों का, हमारा जो प्रेम है वो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। तो इससे इंडिविजुअल्स की बैलेंस शीट जो है वो डेफिनेटली स्ट्रांग हुई होगी।
एग्जैक्टली।
थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।